ओपनिंग नरेशन
एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
परिचय,
तो आज हम मिशेल ओबामा की आत्मकथा बिकमिंग पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसने न सिर्फ बेस्ट सेलर लिस्ट में जगह बनाई बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों को छुआ और सोचने पे मजबूर किया।
बिल्कुल सही कहा, और इसे सिर्फ एक संस्मरण कहना शायद मतलब पूरी बात नहीं होगी। ये एक असाधारण जीवन यात्रा का प्रतिबिंब है, एक ऐसी महिला की कहानी जो कई भूमिकाओं में रही, एक सफल वकील, एक प्रभावशाली लेखिका, और हाँ, अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमेरिकन प्रथम महिला, वो भी 2009 से 2017 तक। उनका सफर कई परतों वाला है, वाकई।
और मुझे लगता है कि उनकी कहानी आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। शिकागो के साउथ साइड की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक के केंद्र व्हाइट हाउस तक पहुंचना, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय यात्रा है।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो तरीका जिससे उन्होंने इस सफर में नस्ल, वर्ग, लिंग, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक पहचान के बेहद जटिल और अक्सर कांटेदार मुद्दों का सामना किया।
सही कहा।
ये संघर्ष आज भी बहुत से लोगों के जीवन का हिस्सा है।
आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये किताब हमें दिखाती है कि पहचान कोई अंतिम पड़ाव नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे वो खुद बड़े सटीक शब्दों में बनना यानी बिकमिंग कहती हैं।
बनना।
हाँ,
ये कहानी है बाहरी दुनिया के दबावों, असाधारण परिस्थितियों और निजी आकांक्षाओं के बीच अपनी असली आवाज खोजने की, उसे समझने की और फिर उसे दुनिया के सामने रखने की।
हाँ,
इसमें एक यूनिवर्सैलिटी है, एक सार्वभौमिकता है जो किसी पद या प्रसिद्धि से कहीं आगे जाती है।
सही।
ये सिर्फ मिशेल ओबामा की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान गढ़ रहा है, जो लगातार बन रहा है।
कालानुक्रमिक यात्रा।
तो चलिए उनकी इस बनने की प्रक्रिया को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। उनके प्रारंभिक वर्ष, वो फॉर्मेटिव ईयर्स, जिन्हें वो किताब में बिकमिंग मी का नाम देती हैं।
शिकागो का साउथ साइड, ये उनकी दुनिया की शुरुआत थी। कैसा था ये माहौल जिसने मिशेल रॉबिन्सन को गढ़ा?
हाँ, बिकमिंग मी, ये उनकी जड़ों की कहानी है। मिशेल रॉबिन्सन का बचपन शिकागो के साउथ साइड इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में बीता, एक मजबूत और प्यार करने वाले परिवार के बीच।
उनके पिता फ्रेजर रॉबिन्सन शहर के वाटर प्लांट में एक ब्लू कॉलर वर्कर थे। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस था,
मतलब एक गंभीर बीमारी। लेकिन इसके बावजूद उनके काम के प्रति निष्ठा, उनका अनुशासन और वो कभी हार ना मानने वाला रवैया, वो मिशेल के लिए जीवन भर प्रेरणा का स्रोत रहा।
और माँ मैनियन रॉबिन्सन।
माँ मैरियन रॉबिन्सन एक होममेकर थीं जिन्होंने घर संभाला और बच्चों में आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और अपने मन की बात कहने का साहस भरा।
और फिर उनके बड़े भाई क्रेग थे, जो उनके दोस्त भी थे और रक्षक भी। तो परिवार में प्यार, स्थिरता और अपेक्षाओं का एक, कह सकते हैं, स्वस्थ संतुलन था।
यानी नींव बहुत मजबूत थी। और आपने कहा उनके माता पिता ने शिक्षा और कड़ी मेहनत पर बहुत जोर दिया, ये बात तो उनकी पूरी कहानी में बार बार उभर कर आती है ना? बिल्कुल। और पिता की बीमारी के बावजूद उनका धैर्य, ये तो छोटी उम्र में ही जीवन के बड़े सबक सीखने जैसा रहा होगा उनके लिए।
निश्चित रूप से। फ्रेजर रॉबिन्सन की रोजमर्रा की चुनौती और उसे गरिमा के साथ जीना, ये मिशेल के लिए लचीलेपन और सकारात्मकता का पहला पाठ था। उन्होंने शिकागो के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की और फिर शहर के प्रतिष्ठित विटनी एम यंग मैग्नेट हाई स्कूल में दाखिला लिया।
अच्छा।
यह उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि यहाँ पहली बार उन्हें अल्पसंख्यक होने का एहसास गहराई से हुआ। स्कूल में ज्यादातर छात्र श्वेत और आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न परिवारों से थे। यहीं पर वो घटना भी हुई जब उनके हाई स्कूल काउंसलर ने उनकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने की महत्वाकांक्षा पर संदेह जताया।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में।
पर दिलचस्प बात ये हुई कि इस संदेह ने उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय उनके इरादे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये दिखाता है कि बाहरी नकारात्मकता कैसे अंदरूनी आग को हवा दे सकती है, एक ऐसा सबक जो मिशेल ने, लगता है, बार बार इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और फिर प्रिंसटन और हार्वर्ड लॉ स्कूल का सफर। जाहिर है, आईवी लीग में एक अश्वेत वर्किंग क्लास लड़की के लिए यह आसान नहीं रहा होगा। किताब में वो कल्चर शॉक, लगातार महसूस होने वाले इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी खुद को उस माहौल के लिए अयोग्य समझने की भावना, इन सब का जिक्र करती हैं।
हाँ, और नस्लीय व वर्गीय विभाजन की गहरी होती समझ का भी। ये अनुभव उनके बनने की प्रक्रिया के कितने महत्वपूर्ण हिस्से थे। ये बेहद महत्वपूर्ण थे। प्रिंसटन और हार्वर्ड ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा तो दी, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी पहचान के उन पहलुओं से भी रूबरू करवाया जिनके बारे में शायद उन्होंने पहले इतना नहीं सोचा था। उन्हें लगातार ये साबित करना पड़ा कि वो वहाँ डिजर्व करती हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम की भावना कि कहीं मैं गलती से यहाँ तो नहीं पहुँच गई, ये बहुत वास्तविक थी, जैसा वो बताती हैं। इन अनुभवों ने उन्हें सामाजिक संरचनाओं, पूर्वाग्रहों और अवसर की असमानताओं के बारे में मतलब एक जमीनी समझ दी। ये सिर्फ अकादमिक सफर नहीं था, ये आत्मखोज का भी सफर था।
फिर आता है लॉ स्कूल के बाद का दौर, मतलब बिकमिंग अस वाला अध्याय। उन्होंने शिकागो की एक नामी लॉ फर्म सिडली ऑस्टिन में नौकरी की। कागज पर तो ये एक शानदार करियर की शुरुआत थी, प्रतिष्ठित फर्म, अच्छा वेतन, लेकिन जैसा वो लिखती हैं, अंदर एक खालीपन था। ये विरोधाभास क्यों?
हाँ, ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। वो कॉर्पोरेट लॉ की दुनिया में सफल तो थीं, पर उन्हें महसूस हो रहा था कि ये काम उनकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रहा। उन्हें लगता था कि वो अपनी जड़ों से, अपने समुदाय से कट गई हैं। ये सफलता बाहरी थी, अंदरूनी नहीं।
अच्छा।
और फिर जीवन ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। उनके पिता और प्रिंसटन की उनकी एक बेहद करीबी दोस्त सुजैन एजेले की कम उम्र में मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने उन्हें जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से वो मशहूर स्वर्व यानी एक अप्रत्याशित मोड़ आया।
ये स्वर्व, ये सिर्फ करियर बदलना नहीं था, है ना? ये शायद अपनी पहचान को उस कॉर्पोरेट परिभाषा से आजाद करना था जिसमें वो फिट नहीं हो पा रही थी। एक तरह से ये अपनी शर्तों पर बनने की शुरुआत थी।
बिल्कुल, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना था। उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ की सुरक्षित पर शायद थोड़ी आत्माविहीन दुनिया को छोड़कर सार्वजनिक सेवा का रास्ता चुना। वो शिकागो मेयर के ऑफिस में असिस्टेंट बनी, फिर एक नॉन प्रॉफिट संगठन पब्लिक अलाइज के शिकागो चैप्टर की स्थापना की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिकल सेंटर में काम किया। ये उनके मूल्यों के ज्यादा करीब था।
और हाँ, इसी सिडली ऑस्टिन फर्म में ही उनकी मुलाकात बराक ओबामा से हुई।
हाँ, जब वो वहां काम कर रही थी तब बराक ओबामा एक समर एसोसिएट के तौर पर आए थे। यहीं से बिकमिंग अस का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू शुरू हुआ।
उनकी मुलाकात और फिर रिश्ते की कहानी भी काफी दिलचस्प है। किताब में वो बताती हैं कि शुरू में वो बराक को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी।
हाँ बिल्कुल,
दोनों के व्यक्तित्व भी काफी अलग लगते हैं।
हाँ, ये क्लासिक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट जैसा मामला लगता है। मिशेल खुद को ज्यादा व्यवहारिक, मुनज्जम, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बताती हैं, जबकि बराक उस समय भी आदर्शवादी, बौद्धिक और शायद थोड़े अस्त व्यस्त थे। मिशेल शुरू में उन्हें डेट करने में झिझक रही थी क्योंकि वो फर्म में उनकी मेंटर थी, लेकिन बराक के आकर्षण और निरंतर प्रयासों ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। उनके रिश्ते की बुनियाद गहरी बातचीत, आपसी सम्मान और हाँ, लगातार समझौते और समायोजन पर टिकी थी।
और फिर बराक के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं।
हाँ,
जाहिर है जब उन्होंने सीनेट और फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनके विवाह पर जबरदस्त दबाव पड़ा होगा।
हाँ बिल्कुल, मिशेल किताब में बहुत ईमानदारी से बताती हैं कि वो अक्सर खुद को अकेली माँ जैसा महसूस करती थी, खासकर जब बराक राजनीति में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी बेटियों मालिया और साशा की परवरिश और अपने चुनौतीपूर्ण करियर के बीच संतुलन साधना पड़ता था। ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल रहा होगा,
अंदाजा लगा सकती हूँ।
ये बेहद मुश्किल था और वो इसे छुपाती नहीं है। वो अपनी प्रजनन संबंधी संघर्षों, गर्भपात के दर्द और फिर आईवीएफ के जरिए बेटियों के जन्म का जिक्र पूरी ईमानदारी से करती हैं।
ये बहुत साहस की बात है।
हाँ, और वो यहाँ तक बताती हैं कि उन्होंने और बराक ने अपने रिश्ते को संभालने के लिए मैरिज काउंसलिंग का सहारा भी लिया। ये बातें साझा करना आसान नहीं होता, खासकर जब आप सार्वजनिक जीवन में हों। ये उनकी कहानी को और ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाता है।
बिल्कुल, और राजनीति में उनकी खुद की दिलचस्पी कम थी। वो तो बराक के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के विचार से भी शुरू में काफी सशंकित थीं। फिर वो कैसे तैयार हुईं?
उनका संशय बहुत गहरा था। उन्हें डर था कि राजनीति उनके परिवार की निजी जिंदगी छीन लेगी, उनकी बेटियों के सामान्य बचपन को प्रभावित करेगी और उनके रिश्ते पर और बोझ डालेगी। वो बराक की महत्वाकांक्षा समझती थी लेकिन उसकी कीमत चुकाने को लेकर चिंतित थी। वो तभी इस सफर में शामिल होने के लिए राजी हुई जब बराक ने वादा किया कि परिवार हमेशा हर हाल में उनकी पहली प्राथमिकता रहेगा।
ओके।
हालांकि 2008 का राष्ट्रपति अभियान उनके लिए फिर भी एक बड़े झटके जैसा था। मीडिया की 2400 घंटा की निगरानी, उनकी हर बात, हर कपड़ा, हर हाव भाव का विश्लेषण,
और वो गुस्सैल अश्वेत महिला वाला स्टीरियोटाइप,
हाँ, सबसे तकलीफ दे वही था। उन्हें कई बार उस नस्लीवादी स्टीरियोटाइप में फिट करने की कोशिश की गई। ये सब झेलना आसान नहीं था, लेकिन इसी मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी आवाज पाई। ये समझा कि अगर वो खुद अपनी कहानी नहीं कहेंगी तो कोई और उनके लिए गढ़ेगा।
सही। और फिर व्हाइट हाउस के वो 8 साल जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय, जिसे वो बिकमिंग मोर कहती हैं, प्रथम महिला बनना, खासकर पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रथम महिला, ये अपने आप में ऐतिहासिक था। इस भूमिका को उन्होंने कैसे निभाया?
प्रथम महिला के तौर पर वो सिर्फ एक औपचारिक मेजबान या कह लीजिए सजावटी भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं थी। वो इस मंच के महत्व और जिम्मेदारी को समझती थी। पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रथम महिला होने के ऐतिहासिक वजन को महसूस करते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस को, जिसे वो पीपल्स हाउस कहती थी, ज्यादा खुला, ज्यादा समावेशी और ज्यादा पहुंच वाला बनाने की कोशिश की।
ये अच्छी बात है।
और एक दिलचस्प और दिल छू लेने वाली बात यह है कि उनकी माँ मैरियन रॉबिन्सन भी उनके साथ व्हाइट हाउस में रहने आ गई।
हाँ।
अपनी माँ की उपस्थिति ने ना सिर्फ मिशेल को भावनात्मक संबल दिया, बल्कि मालिया और साशा के लिए स्थिरता और सामान्य जीवन का एक बहुत जरूरी माहौल भी बनाए रखा।
उनकी पहले उनके इनिशिएटिव्स भी काफी चर्चा में रहीं और उनका गहरा असर भी हुआ। कुछ मुख्य पहलों के बारे में बताएंगे?
हाँ, उनकी पहले उनके व्यक्तिगत अनुभवों और मूल्यों से गहराई से जुड़ी थी, जैसे लेट्स मूव अभियान।
हाँ, बचपन के मोटापे के खिलाफ।
बिल्कुल, और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए था। इसकी प्रेरणा उन्हें सीधे अपनी बेटियों के डॉक्टर से मिली सलाह और अपने परिवार के खान पान की आदतों से मिली थी। ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये उनकी माँ होने के अनुभव से निकली थी। इसने मोटापे पर राष्ट्रीय बहस को एक मानवीय चेहरा दिया। फिर डॉक्टर जिल बिडेन के साथ मिलकर जॉइनिंग फोर्सेस शुरू किया, जो सैन्य परिवारों और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समर्थन करने पर केंद्रित था।
राइट।
शिक्षा पर उनका जोर हमेशा रहा, जिसके तहत रीच हायर पहल अमेरिकी छात्रों को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी, और लेट गर्ल्स लर्न वैश्विक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की बाधाओं को दूर करने का एक प्रयास था।
ये सब काफी महत्वपूर्ण काम थे। मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रही है कि व्हाइट हाउस के उस बुलबुले में रोजमर्रा की जिंदगी असल में कैसी होती थी। बाहर से तो सब भव्य और शक्तिशाली लगता है।
किताब में वो इसे बड़े ईमानदारी से एक सुनहरा पिंजरा या बुलबुला बताती हैं। हर वक्त सीक्रेट सर्विस का घेरा, निजी पलों का लगभग खत्म हो जाना, बच्चों के लिए प्ले डेट्स या स्कूल इवेंट्स जैसी सामान्य चीजों के लिए भी हफ्तों पहले योजना बनाना, ये सब सामान्य जीवन से बहुत दूर था। इन सब के बीच उनका मुख्य ध्यान, जैसा वो कहती हैं, मॉम इन चीफ बने रहने पर था।
हाँ, अपनी बेटियों के लिए।
बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना कि उनकी बेटियां इस असामान्य माहौल में भी यथासंभव सामान्य, जमीन से जुड़ी हुई और सुरक्षित महसूस करें। उन्हें और राष्ट्रपति ओबामा को लगातार नस्लीय टिप्पणियों, भद्दी आलोचनाओं और राजनीतिक हमलों का भी सामना करना पड़ा।
और यहीं से वो मशहूर सिद्धांत निकला, When they go low, we go high.
Exactly. यानी जब दूसरे लोग घटियापन या नकारात्मकता पर उतरें, तो हमें अपनी गरिमा और अपने मूल्यों पर और मजबूती से कायम रहना है।
ये सिद्धांत तो अब राजनीति से परे भी बहुत इस्तेमाल होता है। किताब का अंत व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद के जीवन पर चिंतन के साथ होता है, जहां वो इस पूरी असाधारण यात्रा को समेटती हैं।
मून दर्शन और मूल्य।
तो इस पूरी यात्रा से, शिकागो के साउथ साइड से व्हाइट हाउस और उसके आगे मिशेल ओबामा के मूल दर्शन और जीवन मूल्यों के बारे में क्या सार निकलता है? वो कौन सी केंद्रीय मान्यताएं हैं जो उनकी कहानी को दिशा देती हैं?
कई महत्वपूर्ण और सुसंगत मूल्य उनकी कहानी में धागे की तरह पिरोए हुए दिखते हैं। सबसे पहला और सबसे केंद्रीय तो यही है कि पहचान एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, कोई स्थिर अवस्था नहीं। यही उनके शीर्षक बिकमिंग का मूल भाव है।
हम हमेशा कुछ बन रहे होते हैं।
बिल्कुल, कभी भी पूरी तरह बन नहीं जाते। दूसरा, अपनी जड़ों, अपने परिवार और अपने समुदाय के महत्व को कभी न भूलना। शिकागो के साउथ साइड की परवरिश, उनके माता पिता के मूल्य, ये उनकी पहचान का अटूट हिस्सा रहे, व्हाइट हाउस में भी।
हाँ, ये उनके जमीन से जुड़े रहने का सबूत है।
जरूर। और शिक्षा और कड़ी मेहनत का मूल्य भी
उनकी कहानी में एक स्थायी स्तंभ की तरह नजर आता है ना?
बिल्कुल, ये उनके माता पिता से मिली सीख थी और उनके अपने अनुभव ने इसे और पुख्ता किया।
साथ ही प्रामाणिकता का मूल्य, मतलब अपनी सच्ची आवाज को खोजना और फिर उसे साहस के साथ इस्तेमाल करना। उन्होंने सीखा कि दूसरों की अपेक्षाओं या गढ़ी हुई छवियों में फिट होने की कोशिश करने के बजाय अपना सच बोलना ज्यादा शक्तिशाली और संतोषजनक है, भले ही वो हमेशा आसान ना हो।
ये बहुत जरूरी बात है।
और हाँ, लचीलापन, जीवन में आने वाली बाधाओं, चाहे वो नस्लवाद हो, लिंगवाद हो या अंदरूनी इम्पोस्टर सिंड्रोम हो, उनका सामना करने और उनसे उभर कर और मजबूत बनने की क्षमता।
विवाह को लेकर भी उनका नजरिया काफी यथार्थवादी और सीखने लायक लगता है। वो इसे किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं देखती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मानती हैं कि विवाह एक सच्ची साझेदारी है जिसमें लगातार प्रयास, खुला संवाद, आपसी सम्मान और बहुत सारे समझौते की जरूरत होती है। ये दो अपूर्ण लोगों का साथ मिलकर चलने का सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। उनकी ईमानदारी इस विषय पर बहुत ताजगी भरी है।
सही कहा।
और आखिर में सेवा का भाव और अपने मंच का जिम्मेदारी से उपयोग करने का मूल्य। प्रथम महिला के तौर पर मिले असाधारण मंच का उन्होंने सिर्फ आनंद ही नहीं उठाया, बल्कि उसे उन मुद्दों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जिनमें वो विश्वास करती थी। और हाँ, वो सिद्धांत व्हेन दे गो लो वी गो हाई, ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा, शालीनता और नैतिक दिशा बनाए रखने का गहरा दर्शन है।
तीन महत्वपूर्ण मोड़।
अगर हमें उनकी इस लंबी और घटनापूर्ण जिंदगी से तीन ऐसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी दिशा और शायद उनकी पहचान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वो कौन से होंगे? वो लम्हे जब सब कुछ बदल गया।
ये चुनना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि जीवन कई छोटे बड़े मोड़ों का संगम है, लेकिन अगर तीन सबसे प्रभावशाली मोड़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से पहला होगा द स्वर्व।
हाँ, वो करियर का बदलाव।
बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, अपने पिता और करीबी दोस्त की मृत्यु के बाद उस भावनात्मक उथल पुथल के बीच कॉर्पोरेट लॉ की प्रतिष्ठित और आरामदायक नौकरी छोड़कर सार्वजनिक सेवा के अनिश्चित रास्ते पर कदम रखना, ये सिर्फ करियर बदलना नहीं था, ये अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना था। इसने उन्हें उस रास्ते पर डाला जो आखिरकार व्हाइट हाउस तक गया, लेकिन उससे भी ज्यादा इसने उन्हें खुद से मिलाया।
ये वाकई एक बड़ा और साहसिक फैसला था, खासकर उस वक्त। दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा माना जा सकता है?
दूसरा, मेरे विचार में, बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने पर सहमत होना। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष था। राजनीति और सार्वजनिक जीवन की चकाचौंध और छानबीन को लेकर उनकी गहरी हिचकिचाहट, परिवार पर पड़ने वाले असर का डर, इन सब पर विजय पाकर बराक का साथ देने का फैसला एक जबरदस्त मोड़ था। इसने न सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को इतिहास के केंद्र में ला खड़ा किया, बल्कि मिशेल को एक ऐसी भूमिका में ढाल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
सही।
इसने उनकी पहचान को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें एक वैश्विक आवाज दी।
और तीसरा निर्णायक क्षण, कोई एक घटना या?
तीसरा मैं कहूंगा व्हेन दे गो लो वी गो हाई सिद्धांत का सिर्फ कहना नहीं बल्कि उसे जीना। ये शायद कोई एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी। अभियानों और व्हाइट हाउस के 8 सालों के दौरान लगातार मिलने वाली तीखी, अक्सर नस्लवादी और व्यक्तिगत आलोचनाओं के जवाब में विकसित हुई एक सोच और व्यवहार शैली थी।
हाँ, ये एक तरह का रवैया था।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक चुनाव था। गरिमा चुनने का, नफरत का जवाब नफरत से न देने का और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने का। इसने न सिर्फ उन्हें मुश्किल दौर से निकलने में मदद की बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का एक प्रेरणादायक मॉडल भी पेश किया। ये दिखाता है कि उन्होंने आलोचना को खुद पर हावी नहीं होने दिया बल्कि उसे अपनी नैतिक शक्ति का प्रमाण बनाया।
मानवीय सबक और चिंतन।
मिशेल ओबामा की कहानी यकीनन असाधारण है। पहली अफ्रीकी अमेरिकी प्रथम महिला, वैश्विक हस्ती, लेकिन इस असाधारणता के पीछे जो मानवीय अनुभव है उनसे आज का आम श्रोता क्या सीख सकता है? ये कहानी हमारे अपने जीवन के संघर्षों और आकांक्षाओं से कैसे जुड़ती है?
यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। ये असाधारण होते हुए भी बेहद मानवीय है। ये कई ऐसे सार्वभौमिक अनुभवों को छूती है जिनसे हम सब गुजरते हैं। उदाहरण के लिए आत्मसंदेह से जूझना, वो अंदरूनी आवाज जो पूछती है क्या मैं इसके लिए काफी अच्छी हूँ।
हाँ, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम।
बिल्कुल, मिशेल ओबामा प्रिंसटन से लेकर व्हाइट हाउस तक इस भावना से जूझीं। ये एहसास कि हम शायद अपनी सफलता के लायक नहीं हैं, ये कितने लोगों को महसूस होता है?
बहुत लोगों को। और वो संतुलन बनाने की जद्दोजहद, अपने करियर की महत्वाकांक्षाएं, परिवार की जिम्मेदारियां और अपनी खुद की व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना, ये तो आज के समय में शायद हर कामकाजी व्यक्ति, खासकर महिलाओं के लिए एक रोजमर्रा की चुनौती है।
बिल्कुल, रिश्तों को निभाने की वास्तविकता और उनमें लगने वाले सतत प्रयास को समझना, खासकर विवाह के संदर्भ में, उनकी ईमानदारी हमें सिखाती है कि मजबूत रिश्ते बनते हैं, बने बनाए नहीं मिलते। उनमें संवाद, समझौता और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता लगती है। फिर पारंपरिक सफलता जैसे अच्छी नौकरी, पैसा, पद, उससे आगे बढ़कर जीवन का गहरा उद्देश्य खोजना, उनका स्वर्व हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि अक्सर तयशुदा रास्तों से हटकर मिलती है।
पूर्वाग्रहों का सामना करना, चाहे वो नस्ल या लिंग या वर्ग पर आधारित हो, और उनका रचनात्मक और गरिमापूर्ण तरीके से जवाब देना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है जो आज के विभाजित समाज में मायने रखता है।
निश्चित रूप से, When they go low, we go high. सिर्फ राजनीति का जुमला नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने देना। साथ ही अपनी कहानी, अपनी जड़ों को जानने और उन्हें अपनाने की ताकत। मिशेल ओबामा बार बार अपनी साउथ साइड की परवरिश, अपने माता पिता की सीख का जिक्र करती हैं।
हाँ, ये दिखाता है कि हमारा अतीत हमें गढ़ता है
और हमें ताकत देता है। और अंततः ये पूरी कहानी हमें व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की निरंतर प्रकृति की याद दिलाती है कि हम सब हमेशा बनने की प्रक्रिया में हैं, लगातार सीख रहे हैं, ढल रहे हैं और उम्मीद है कि बेहतर हो रहे हैं।
तीन अंतिम निष्कर्ष।
ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। अगर इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं को मिशेल ओबामा की बिकमिंग से तीन मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? वो तीन सार जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं।
अगर मुझे इसे तीन बिंदुओं में समेटना हो तो वो शायद ये होंगे। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। अपनी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और अपनी कहानी को पूरी तरह अपनाने में जबरदस्त शक्ति निहित है, भले ही वो कहानी अपूर्ण हो, उसमें संघर्ष और कमियां हों। ये जानना कि हमारी कहानी हमारी अपनी है और उसमें शर्मिंदा होने की नहीं, बल्कि उसे साहस के साथ जीने की जरूरत है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिशेल ओबामा की ईमानदारी हमें यही सिखाती है।
बिल्कुल। दूसरा,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। पहचान एक सतत यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। यही बिकमिंग के विचार का सार है। जीवन का अर्थ है लगातार सीखना, बदलना, विकसित होना और खुद का एक बेहतर, ज्यादा सच्चा संस्करण बनने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये सोच हमें ठहराव से बचाती है और हमें हमेशा विकास के लिए प्रेरित करती है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बन चुके।
सही है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। विपरीत परिस्थितियों में, आलोचना और नकारात्मकता के तूफान में भी अपनी शालीनता, गरिमा और ईमानदारी बनाए रखने का महत्व, यानी व्हेन दे गो लो वी गो हाई का सिद्धांत। और इसके साथ ही अपने मंच का उपयोग, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हमारा परिवार, हमारा कार्यस्थल, हमारा समुदाय, दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना। ये सिर्फ प्रथम महिला के लिए नहीं, हम सब के लिए एक अवसर और जिम्मेदारी है।
तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी अपनी बनने की इस अनूठी यात्रा में इस वक्त कहाँ हैं और हमारा अगला कदम, हमारा अगला अध्याय क्या हो सकता है।
क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।